ओम शांति, ओम शांति। सर्वप्रथम आप सबका मधुबन घर में स्वीट होम में संसार की सबसे पवित्रतम स्थान पर शक्तियों की कर्मभूमि ब्रह्मा बाबा की चरित्र भूमि हम सब देवों की रंग भूमि मधुबन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। चाहे भट्टी के लिए आए हों, चाहे सेवा के लिए आए हों या पार्टी में आए हों, उन सबका मधुबन में बाबा आज भी दोनों बाहें खोलकर हम सबका आप सबका अहर्निश निरंतर स्वागत करते हैं। अनुभव होता है कि सब स्वागत हो रहा है, सबको अनुभव होता है, भट्टी में आए हुए भाई बहनों को भी होता है। ऐसे होता है ना कि मधुबन में आते हैं तो एकदम नया दिखाई पड़ता है सब। तो आप सबको कल्प की सबसे सुहानी घड़ी, सर्वोत्तम घड़ी और अपना कल्प कल्प का भाग्य पुनः प्राप्त करने के लिए मधुबन में आने की एक बार और बधाई हो आप सबको, उसकी भी बहुत बहुत बधाई हो। आज की मुरली के अनुसार भी जैसे बाबा प्यार का सागर है और वो सागर क्या करता है, उसके जैसा प्यार कोई और कर नहीं सकता। कर सकता है कोई? कोई कर सकता है? उसके जैसा कोई प्यार कर नहीं सकता। ये अनुभव करने वालों का और ऐसे बाप समान बन करके सबको सुख देने वालों का, कभी किसी को रंज न करने वालों का, नाराज न करने वालों का, और किस प्रकार के ख्यालात चलते रहें तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। कौन से ख्यालात रहें कि जैसे अभी हम ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरपूर करते हैं, ऐसे ही फिर सतयुग में वहां पर खानियां आदि सब भरपूर हो जाएंगी और हम क्या करेंगे, सोने के महल बनाएंगे। बनाएंगे या रहेंगे भी? रहेंगे भी। अच्छा, तो ऐसे सोने के महल बनाने वालों का, और वो तो जब होगा तब होगा, संगम युग में उत्तम से उत्तम ब्राह्मण कुल के हम सब हैं, उत्तम कुल के हैं, और सत्यनारायण की कथा, अमरनाथ की कथा सुन रहे हैं, सुना रहे हैं। अगर ये स्मृति है तो क्या होगा, खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। इस बात को अच्छी तरह समझने वालों का धारणा सार के अनुसार कभी भी किसी भी उल्टी पुल्टी बातों का विश्वास न करने वालों का, और जो कुछ भी पढ़ा है उल्टा पुल्टा वो सब भूल करके क्या करें, अशरीरी बनने का अभ्यास करने वालों का, और सिर्फ आशीर्वाद पर नहीं चलने वालों का बल्कि स्वयं को पावन बनाने वालों का भी, बाप को पूरा पूरा फॉलो करने वालों का, कभी भी किसी को दुख न देने वालों का, कभी किसी को नाराज न करने वालों का, और आज के वरदान के अनुसार सच्ची लगन के आधार पर और सब संग तोड़ एक संग जोड़ने वाले संपूर्ण वफादार बनने वालों का, और स्लोगन के अनुसार, स्लोगन के अनुसार क्या कि सच्ची सत्यता की स्वस्थिति परिस्थिति में भी संपूर्ण बना देगी और अचल अडोल बनने वालों का, एक रस रहने वालों का, एक बाबा दूसरा न कोई स्मृति में रहने वालों का है, एक बाबा दूसरा न कोई संसार बनाने वालों का, बाबा को अपना संसार बनाने वालों का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। एक बार फिर से स्वागत स्वीकार करें। तो आप में से प्रश्न है कि कौन है जिनको लगता है कि मेरी खुशी का कोई पारावार नहीं, मैं बहुत खुश हूं। 100% है कि कम है? थोड़ा कुछ हाथ हाथ नहीं उठा रहे हैं, उठा रहे हैं। 100% खुशी किसको है? किसको 100%? इससे भी ज्यादा किसी को है? इससे भी ज्यादा? हम सब बहुत खुश नसीब हैं। हमारी खुशी का पारा निरंतर चढ़ा रहना चाहिए। ये नहीं कि ये पॉइंट याद रहे तो खुशी रहे, और पॉइंट भूल जाए तो खुशी गायब हो जाए, ऐसा नहीं। हमें ऐसी खुशी मिली है कि जो अविनाशी है। हमें ईश्वरीय जीवन में जो आनंद मिला है, संगम युग का जो आनंद मिला है, बाबा के हर मुरली में खुशी की पॉइंट जरूर होती है। और बाबा यही कहते हैं, खुशी में रहने के लिए ये करो, खुशी में रहने के लिए ये करो, खुशी में रहने के लिए ये याद करो। तो खुशी कहाँ है? कहाँ है खुशी? खुशी कहाँ है? हमारे ख्यालों में, हमारे विचारों में, हमारी स्मृति में। अब उस स्मृति से स्वरूप में रहे, स्वरूप से हमारे स्वभाव में आ जाना चाहिए। खुशी हमारी नेचुरल नेचर बन जाए। खुशी के लिए तरकीब न ढूंढना पड़े, कोई बहाना न ढूंढना पड़े, ये हो तो खुशी हो। ऐसी खुशी बाबा के बच्चों में नहीं होनी चाहिए। बाबा के बच्चों में निरंतर खुशी हो, सदा काल के लिए खुशी हो। कब खुशी रहेगी? हमेशा खुश कौन रह सकता है? हमेशा खुश कोई बताएगा आप में से? हमेशा खुश कौन रह सकता है? हमेशा खुश वो रह सकता है जिसने खुशी में रहने की ठान ली। कुछ भी हो जाए, धरती धसे चाहे आकाश गिरे, जान चली जाए, लेकिन अरे जान ही नहीं रहेगी तो खुशी कहां रहेगी? लेकिन दादी कहती है, बाबा कहते हैं, जान चली जाए लेकिन हमारी खुशी नहीं जानी चाहिए। तो आज हम सब कैसे सदा खुश रहें, कैसे खुशी का पारा चढ़ा रहे हमेशा, इस पर विचार करेंगे। और आने वाली स्थितियों में, परिस्थितियों में, आने वाला जो समय है, उसमें भी अपनी स्वस्थिति को बहुत सुदृढ़ कर सकें, शक्तिशाली बन सकें, उस पर विचार करते हैं। एक गीत सुना होगा आपने, हमको मिली ऐसी खुशी, हमको मिली ऐसी खुशी जो कहीं मिलती नहीं, फूल है या ये कली हर बाग में खिलती नहीं, हमको मिली ऐसी खुशी जो कहीं मिलती नहीं। रूप भी अनूप है, क्या जब ये रंग है, जगमगाए ज्योति बिंदु, वो तो अपने संग है, रात दिन उनसे नजर अब जरा हटती नहीं, फूल है या ये कली हर बाग में खिलती नहीं, हमको मिली ऐसी खुशी जो कहीं मिलती नहीं। धूप है कि छांव है ये नहीं मुरझाएगी, धूप है कि छांव है ये नहीं मुरझाएगी, गम की आए आंधियां तो भी ये मुस्काएगी, है अमर अपनी खुशी जिसकी उम्र ढलती नहीं, है अमर अपनी खुशी जिसकी उम्र ढलती नहीं, फूल है या ये कली हर बाग में खिलती नहीं, हमको मिली ऐसी खुशी जो कहीं मिलती नहीं। और तन रहे कि ना रहे हमको कोई गम नहीं, क्योंकि सबसे ज्यादा गम यही होता है, क्या पता ये कुछ हो गया, फोड़ा हो गया, कहीं कैंसर तो नहीं, कहीं ये तो नहीं, कहीं वो तो नहीं, है सबसे बड़ा डर यही होता है। लेकिन हम बच्चे एवर रेडी, एवर रेडी हैं सर, सब एवर रेडी। तन रहे कि न रहे, तन रहे कि न रहे हमको कोई गम नहीं, कोई गम नहीं, है अनोखी ये खुशी जो मिली ये कम नहीं, और अब क्या चाहिए, और अब क्या चाहिए, गाते जुबा थकती नहीं, हमको मिली ऐसी खुशी जो कहीं मिलती नहीं, फूल है या ये कली हर बाग में खिलती नहीं, हमको मिली ऐसी खुशी जो कहीं मिलती नहीं। तो ऐसी खुशी मिली है, किसी से पूछा भाई कि शक्ल ऐसे रोने वाली क्यों बनाया है, तो कहा कि मैं रो नहीं रहा हूं, मेरी शक्ल ही ऐसी है। ब्राह्मण बच्चों को निरंतर खुश रहना है। खुश रहने के लिए पहली तो बात यह है कि इच्छाएं अपेक्षाएं किसी से नहीं रखनी रखे। जिसकी अंदर इच्छा है कि मेरा ये हो जाए, वो हो जाए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, जो कहीं न कहीं अपनी इच्छाओं को पाल के रखा है, इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं तो वो खुशी नहीं रहती। इसलिए निरंतर खुश रहना उसके लिए जरूरी है कि हम इच्छाओं को क्या करें, वहीं पूरा करें। और क्या गीत गाएं, और अब क्या चाहिए, पाना था जो पा लिया अब और क्या बाकी रहा, पाना था जो पा लिया अब और क्या बाकी रहा, इसके लिए अपने को पक्का कर लें, निश्चित कर लें खुश रहने के लिए। और दूसरी बात, खुश वो रह सकता है जो श्रीमत पर चलता है, जो नियमों में मर्यादाओं में चलता है। नियमों और मर्यादाओं में न चले, दिनचर्या में न चले, ईश्वरीय मर्यादाओं का पालन न करे, और कोई चाहे वो खुश रहे, वो खुश रहेगा? कुछ ठान लेगा, कुछ जबरदस्ती करेगा, कुछ दिखाने के लिए करेगा, लेकिन ओरिजिनल खुशी उसमें नहीं रहेगी। खुशी किसको रहेगी? जिसका अमृत बेला बहुत अच्छा हो जाता है, जो बाबा की मुरली का आनंद लेता है, जो चलते फिरते बाबा के द्वारा जो प्राप्त प्राप्तियां हैं उनके गुण गाता रहता है, जो ईश्वरीय परिवार को देख के आनंदित होता है, जो सरल स्वभावी है, जिसके चेहरे पर प्राप्तियों की मुस्कान है, जो समझता है कि हमें भगवान मिला निश्चय बुद्धि है, वो सदा खुश रहता है। निश्चय बुद्धि, जिसका जितना निश्चय आगे बढ़ता जाता है, जो तुझको जितना जानता है वो तेरे ही गुण गाता है, और जो तुझको प्रभु पहचानता है वो तुझसा ही बन जाता है, वो उसके जैसा बन जाता है, उसको जो जितना पहचानता है। तो निश्चय में कमी ना हो। कौन सी निश्चय? पहला निश्चय किसमें? स्वयं में निश्चय। स्वयं में निश्चय सबको है, निश्चय सबको पक्का निश्चय है। हम कौन है? पक्का निश्चय है ना, आस्था ना स्लोगन में, कि सत्यता की स्वस्थिति परिस्थितियों में भी हमें संपूर्ण बना देगी। सत्यता की स्वस्थिति क्या है? सत्यता की स्वस्थिति है सत्य स्वरूप में रहना, अपने आत्मिक स्वरूप में रहना, अविनाशी स्वरूप में रहना। यह सत्यता का स्वरूप है, स्वस्थिति। सत्य स्वरूप, सत्य धर्म, सत्य कर्म, सत्य स्वदेश, सत्य पिता, सत्य लक्ष्य और सत्य लक्षण में जो स्थित रहता है वही सत्यता की स्वस्थिति है। हम सब जानते हैं कि हमें खुशी का विपुल भंडार बन गया है, मिल गया है। हम सब ये भी जानते हैं कि हम सब निश्चय बुद्धि नंबर वार है। स्वयं का निश्चय, स्वयं के पिता में, बाबा में निश्चय, समय में निश्चय और परिवार में निश्चय, परिवार में निश्चय, ज्ञान में भी निश्चय। ये सब निश्चय बुद्धि, जितना जितना हमारा निश्चय का परसेंटेज, निश्चय की परसेंटेज, निश्चय का प्रतिशत जितना जितना हमारा बढ़ता जाता है उतना उतना हमारी खुशी बढ़ती जाती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कौन समझते हैं कि ज्ञान में आने के बाद से हमारी खुशी की जो स्थिति है, जो पैराग्राफ, जो खुशी का जो ग्राफ है वो बढ़ता ही जाता है, अभी तक बढ़ता ही जा रहा है? लंबा हाथ उठाएं, लंबा हाथ उठाएं। ठीक है, बहुत अच्छा, बधाई आपको, एक बार अपने लिए अभिनंदन करें, बहुत अच्छा। अगर आप कुछ नहीं सुना सकते हैं, नहीं सेवा कर सकते हैं, खुश रहना सीख लें। खुश रहने से सेवा ऑटोमेटिक हो जाती है, ऑटोमेटिक। आपके खुशी के चेहरा देखकर सामने वाला समझता है कि कोरोना काल हुआ तो भी इनके परिवार में भी कोई नहीं रहा, लेकिन तो भी ये मुस्कुराते रहे हैं। हमारी स्वस्थिति देखकर औरों को भी प्रेरणा मिलती है, सारा संसार देख रहा है। लेकिन हमारी खुशी जो है वो बाहर दिखाने वाली खुशी नहीं, दांत दिखाने वाला नहीं, और वो भी लॉफिंग क्लब में जो आके जो जाते हैं वहां जो हंसते हैं मुस्कुराते हैं, हमारी खुशी वो भी नहीं। वो तो थोड़ी देर के लिए हा 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 करते हैं शरीर को ठीक करने के लिए, लेकिन देखा जाए तो किसी के पास भी सच्ची खुशी नहीं। और आने वाले दिनों में जो स्थितियां बन रही हैं वो तो बड़ी भयावह बन रही है। आज भी बाबा ने मुरली में कहा, विनाश के सब दिनों दिन समय आते जा रहा है, विनाश सामने खड़ा है, मौत सामने खड़ी है। और हम सब ये सब भी जानते हैं कि जैसे समय चल रहा है, संकेत मिल रहा है, इशारा मिल रहा है कि आने वाले समय में कैसे परीक्षाएं होंगी, क्या क्या घटनाएं होंगी, किन किन स्थितियों से गुजरना होगा, हम सब उसको भी जानते हैं, है ना। परीक्षाएं, पहली परीक्षा होगी आवश्यक वस्तुओं के अभावों के द्वारा। डीजल, पेट्रोल, पानी, भारत में ही देखिए तो भारत के 50 जिलों में जो भूमिगत पानी है वो पानी है ही नहीं, खत्म हो गया है। 200 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिनमें पानी का स्तर भी 200 फीट से भी नीचे चला गया है। नीचे का पानी नहीं, मीठा पानी, पीने योग्य जो पानी होता है, भूगर्भ पानी। आने वाले समय में चारों तरफ पानी रहेगा, सागर की तरह बाढ़ वाला रहेगा, लेकिन पीने लायक पानी नहीं रहेगा, है ना। और कहीं कहीं ऐसा भी होगा कि पानी पीने के लिए कहते हैं, बाबा ने कहा करते हैं, अंगूठी भी दे दो, सोने की वो भी दे दो, जो चाहे सब दे दो भैया ले लो, लेकिन हमको पानी चाहिए, तो पानी नहीं मिलेगा। आवश्यक वस्तुओं के अभावों के द्वारा कोरोना काल में देखा तो हवा भी नहीं सिद्धि मिल रही थी, खिड़कियों भी खोलने भी बड़ा मुश्किल हो गया था। ऐसा लगता था कि कहीं कोई आ ना जाए, टच ना हो, तो फिर भी गनीमत रही, हवा तो कम से कम ठीक रही। भोपाल गैस कांड में हजारों लोग मर गए। एक बहन का अनुभव उसने सुनाया कि मैं थकी मांदी थी और देखा कुछ बाहर कुछ आवाज तो हो रहा है लेकिन मुझे कुछ नहीं, मैं आकर रजाई ओढ़ के फिर लेट गई। वो बच गई क्योंकि रजाई के नीचे हो रही तो बच गई, बाकी जो बाहर भागे वो तो भाग ही नहीं पाए। तो अंत में जो अपने को संपूर्ण रूप से बाबा को समर्पित कर दिए हैं वही संपूर्ण सुरक्षित रहेंगे, बाबा के जो बच्चे बनेंगे वही बच्चे रहेंगे। बच्चे कौन? बच्चे वो जो बाबा को बाबा समझकर अपना सब कुछ उसके हवाले कर देते हैं, जो उसके वर्षे के अधिकारी बन जाते हैं, जो उसके पात्र बन जाते हैं। तो पहली परीक्षा होगी आवश्यक वस्तुओं के अभावों के द्वारा, दूसरी परीक्षा होगी अपने पुराने संस्कारों के द्वारा, अपने संस्कारों द्वारा। ऐसी परीक्षा होगी कि जो कभी भी संस्कार नहीं आए, कभी सपनों में भी जो संकल्प नहीं आए, ऐसे ऐसे सपने, ऐसे ऐसे ख्याल, ऐसे ऐसे संस्कार इमर्ज होंगे जिनको देख करके बहुत भय लगेगा, डर लगेगा, इसलिए उसके लिए भी तैयार होना है अपने संस्कारों द्वारा। तीसरा होगा पेपर, 5 विकारों के द्वारा पेपर, फुल फोर्स में ज्यों ज्यों कलयुग चरम पर है, आगे बढ़ रहा है, त्यों त्यों जो छोटे छोटे जो नए नए बच्चे जो जन्म ले रहे हैं वो भी पूरा विकारों से भरे हों, जिसे लगता है कि पेट से सीख के आए हों, वो सभी इस तरह है, वायुमंडल ऐसा है, समय ऐसा है। रामायण में कहते हैं कि जब राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ जब तारका का वध कर रहे थे तो शाम होने लगी लेकिन उसका कुछ भी बिगड़ा नहीं। पंखा चाहिए क्या? पीछे पंखा चल रहा है ना। अच्छा, तो तारका वध हो रहा था तो विश्वामित्र ने कहा राम को कि राम, शाम हो गई है, दिन ढल गया है, रात गहराती जा रही है, ज्यों ज्यों रात गहराती जाएगी त्यों त्यों आसुरी शक्तियां और ही प्रबल होती जाएंगी, इसलिए रात की प्रतीक्षा मत करो, इसको नष्ट करो। ऐसे ही ज्यों ज्यों कलयुग की रात्रि गहराती जा रही है आसुरी शक्तियों का प्रादुर्भाव बढ़ता जा रहा है, प्रबल होती जा रही है, और उन आसुरी शक्तियों को देखते हुए हम सबको भी असुर संहारिणी बनना है, हम सबको भी अपने आप को पूरा तैयार करना है, अपनी शक्तियों को उजागर करना है, अपनी शक्तियों को, ठीक है। तो 5 विकारों का प्रबल प्रवाह, काम फुल फोर्स में, काम का फुल फोर्स कैसा होगा? बहुत ही बड़ा। कामनाएं, लोगों की कामनाएं बहुत बढ़ती जा रही, ज्यों ज्यों देख रहे हैं लोगों के अंदर, इनके पास ये है, उनके पास ये है, तो लोग कामना पूरी नहीं हो रही है, कामनाएं बहुत हैं, चाहते बहुत कुछ है, मिल कुछ नहीं रहा है, उसके कारण विक्षिप्त होते जा रहे हैं, मानसिक विक्षिप्तता, पागलपन। आने वाले दिनों में पूरा संसार मेंटल प्रॉब्लम से और मरीजों से भर जाएगा, हॉस्पिटल कोई काम नहीं आएंगे, क्योंकि इस मानसिक बीमारी की इलाज कोई डॉक्टर के पास नहीं है। डॉक्टर तो इंजेक्शन दे देते हैं, सो जाओ, लेकिन कितने दिन से खा ही रहे हैं, कोई पागल हो गए हैं तो खाते ही जा रहे हैं दवाई, कितने कितने दिनों तक दिमागी बीमारी है, उनका कुछ हो ही नहीं रहा, ठीक नहीं हो रहा है। भगवान ही यहां दिमाग सबका ठीक करने आया है, सबका पागलपन दूर करना है ना? इसलिए आने वाले दिनों में ऐसी स्थितियां परिस्थितियां बनेंगी कि पूरा संसार ये मेंटल हॉस्पिटल बन जाएगा, और उस मेंटल हॉस्पिटल में सब मेंटल पेशेंट होंगे, मानसिक रोगी। ठीक है, ठीक तो नहीं है लेकिन लेकिन ये भी ठीक है, आने वाले समय के लिए बाबा ने इशारा तो दे दिया है, है ना? तो पांच विकारों का फुल फोर्स क्या है, वो बढ़ेगा, काम चरम सीमा पर, क्रोध कर्म चरम सीमा पर। आपके हाथ में जो मोबाइल है, आने वाले दिनों में ये मोबाइल सबको पागल बना देगा। कहीं आपने देखा होगा, एक बहन है स्कूल में, टीचर देख रहा है कि उसके हाथ में मोबाइल है, कुछ सुना रहा है, लेकिन फिर भी वो मोबाइल ही देख रही, उसको मोबाइल छीन लिया, पागल होकर गिर गई वो। अरे ये क्या हो गया? तो कहने का मतलब ये है कि लोगों में मानसिक विक्षिप्तता पागल बनाने के लिए यही है। अगर थोड़ी देर के लिए मोबाइल उसका गुम हो जाए, एक दिन के लिए अगर ना चले, जो बराबर चल रहे हैं, छोटे नन्हे नन्हे बच्चे भी, पता नहीं ये बच्चों की बात मैं नहीं कर रहा हूं जो सामने बैठे हैं दोनों लेकिन बच्चों को भी देखिए कितनी विक्षिप्तता बढ़ती जा रही है। ये मोबाइल वगैरह जितना भी इंटरनेट है, ये साधन जो है आने वाले दिनों में लोगों को पागल बनाने के सबसे बड़े जरिया बन जाएंगे, सबसे बड़े साधन बनेंगे। आप देख रहे हैं क्या हालत है लोगों का, इतनी इतनी बीमारी, इसमें क्या क्या नहीं भरा है, और कोई उसका उपयोग कर पाए पॉजिटिव रूप से बहुत कम। हम देखना चाहते हैं कुछ मतलब के लिए कि इसका क्या होता है, लेकिन उसमें ऐसा बीमारी है कि उसको बढ़ाओ, उसको देखो, अगर एक इंटरेस्ट लो तो उसके आगे वो बढ़ता जाता है, उसमें देखो तो क्या क्या है। इसलिए राजयोगियों को सावधान होना है। दुनिया वाले तो पागल हो ही रहे, लेकिन हमारे राजयोगी जिनको भी है, उनको चाहिए कि डिजिटल डिटॉक्सिकेशन होना चाहिए, डिजिटल बीमारी से बचने के लिए अपने आप को क्या करेंगे। है कोई उपाय? आपके बच्चे हैं, बच्चे रात दिन लगे, उनको कहते हैं नहीं देखो, वो देखते मम्मी पापा खुद ही बिजी हैं उसमें, वो मनाए कैसे, रोके कैसे? कोई इसका चारा दूर तक नहीं मिलता है। अपने लिए, हम सब ब्राह्मणों के लिए तो है, अभी से सावधान होना बहुत जरूरी है। अगर हम उसको लेकर दिन की दिनचर्या में सवेरे से लेकर के हम मुरली जब तक सुनते हैं, कम से कम 4 घंटा 5 घंटा मोबाइल को तो हम हाथ ही न लगाएं। सवेरे अमृत वेले भी मोबाइल न ले जाएं, मुरली में जाएं तो जितना हो सके डायरेक्ट सुने, नहीं तो बैठे हैं मोबाइल से मुरली सुनने में और धीरे धीरे करके क्या देखने लगते हैं और कहां कहां चले जाते हैं। ये रॉयल माया है, बाबा से भी दूर कर देता है। सामने बैठे हैं, देख रहे हैं बाबा को, लेकिन मोबाइल के जो समाचार सुना, जो भी देखा, वही सब दिखाई पड़ता है। इसलिए इससे बचने का जितना हो सके इसके पास से आना बंद करें। और आपको बताया गया था कि जिसे भट्टी में आए हैं आपको मौन में रहना है, तो कह तो दिया गया मौन में रहना है। और तीनों एम, मन का मौन, मुख का मौन, मोबाइल का मौन, तीनों के लिए कहा गया कि मौन में रख दो उसको, मोबाइल को भी 3 दिन के लिए। लेकिन बहुत मुश्किल से कोई रख पाता है। हमारे भट्टी वाले भाई बैठे हैं, सब मोबाइल बंद कर दिए हैं या चल रहा है? मोबाइल बंद किया है, जिन्होंने बंद कर दिया है वो हंसते हैं। भट्टी वाले जिन्होंने मोबाइल बंद कर दिया है, बहुत अच्छा भाई, अभिनंदन करो, इनका अभिनंदन करो, बहुत बड़ी बात है। और जब तक आप इसको मौन नहीं करते, मन का, मुख का और मोबाइल का मौन नहीं होगा, कोई साधना सफल नहीं होगी। क्योंकि तपस्या का प्रथम सोपान अंतर्मुखी बनना है, मौन धारण करना, मौन धारण करना, अंतर्मुखता बहुत जरूरी है। अंतर्मुखता के बड़े फायदे, हमारा जो मन है वो वणिक है, व्यापारी है, बनिया है, जहां फायदा होता है वहीं जाता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि अंतर्मुखता के लाभ क्या हैं, वो जानना बहुत जरूरी है। अंतर्मुखता का पहला लाभ है व्यर्थ से बचत हो जाती है। जितना हम अंतर्मुखी बनते जाते हैं उतना हम व्यर्थ से बच जाते हैं। एक बार दादी जी ने, हम मधुबन निवासियों को मधुबन में ही वाचा के बचत की स्कीम बनाई कि वाणी से, वाणी को बचाएं, वाचा को बचाएं, कम से कम बोलें। तो देखा गया कि किचन वाले सब काम हो रहा है, काम वही है, हम बोल नहीं रहे, लगता है हम कुछ कर ही नहीं रहे, सब काम हो रहा है, सारा टाइम हमारा बोलने में और बोलने के विस्तार में, इसमें ही जाता है। अगर हम वाणी को अपने बचत कर लिए, अंतर्मुखी बन गए, तो हम अपना व्यर्थ से बहुत कुछ बचा लेते हैं। और सबसे बड़ी बात है, समय संयम हो जाता है, हमारा समय बच जाता है। इसलिए भट्टी में है, यहां से जाने के बाद भी हर भाई बहन अपनी दिनचर्या में 4 से 5 घंटा मौन में अंतर्मुखी रहने का रोज ही अभ्यास कर ले, रोज ही भट्टी, कम से कम सवेरे 8 बजे तक, जब तक आपको अपने वर्क में पूरा शामिल नहीं होना पड़ता है तब तक आपको मौन में ही रहना है। कौन कर सकते हैं आप में से? कौन कर सकते हैं? रहते भी हैं लेकिन फिर भी और अटेंशन, डबल अंडरलाइन, ठीक है? तो ये इस प्रकार से आप वाणी संयम से समय संयम बचा लेंगे। दूसरा, व्यर्थ से बच जाएंगे, समय भी बच जाएगा। और तीसरी बात, जो व्यर्थ का टकराव होता है संबंधों में, तू तेरा, तेरा तेरा मेरा को जो होता है, उसका भी कारण हमारा, हमारी बहिर्मुखता है। जब वाणी में आते हैं, किसी को सरलता से बोल दिया उसको वही बुरा लग गया, किसी से कुछ कह दिया वो बुरा लग गया, हमारे मुख से भी कुछ निकल जाता है। आश्चर्य की बात तो ये है कि बोलने वाला जब बोलता रहता है तो बोलते बोलते क्या बोल देता है, कभी कभी उसको पता ही नहीं लगता मैंने क्या बोल दिया। इसलिए टॉकेटिव होने पर, बातूनी बनने के बाद, और जिसको बहिर्मुखता का रस मिल गया है, जो हमेशा वाणी में आता है, जिसको वाणी का शौक है, वाणिक, वाणी वाला, वाचाल, उस व्यक्ति से बिना बोले तो रहा ही नहीं जाता है। अगर उसको 1 घंटा भी मौन में कह दिया जाए तो उसके पेट में पकौड़े पकने लगे हैं, वो रह नहीं सकेगा। ये क्या हो रहा है? और मौन रहना किसी सिद्ध पुरुष का यही काम हो जाता है। हम सब ब्राह्मण बच्चों को अपने जीवन में इस बात का ध्यान रखना है कि प्रतिदिन 4-5 घंटा अंतर्मुखी हो जाए। हो सके तो एक दिन सोमवार को मौन में रह लें, रह सकते हैं, या संडे को कर लें, या किसी दिन कर लो, कर ले। हमने देखा है, एक सेंटर है, बड़ा सा सेंटर है, उसमें बड़ी बहन ने अपना डेट फाइनल कर दिया है कि इस दिन को मैं मौन में रहती हूं। उसने सबको बता दिया, मोबाइल अपनी बहनों को दे दिया, बड़ी बहन स्वयं मौन में रहती है। उसने बता दिया, अगर कहीं मुख्यालय से, मधुबन से कहीं फोन आ जाए बड़ी बहनों का, तो मुझे बताना, अन्यथा और कोई भी बात हो नोट कर लेना, मुझे बाद में बताना, या जवाब देना और बता देना कि दीदी आज मौन में। बड़ी अच्छी बात लगती, कितनी अच्छी बात है। फिर दूसरे दिन दूसरी बहन, वो मौन में रहती, वो मोबाइल दे दिया दूसरे को। तीसरे दिन तीसरी बहन रह जाती है। ऐसे करके पूरे हफ्ते में वो सेंटर वाले वो मौन में रहते हैं। आज उनका मौन है, उनका मौन है, उनका मौन। कोई भी व्यक्ति बहाना नहीं दे सकता है हमारे सिवाय। मैं अपने लिए क्यों कह रहा हूं, मौन में तो रहते ही हैं। मैं तो अपनी दिनचर्या में देखता हूं कि दिन भर में 3-3 बार 3-3 जगह पर गीत है, उसका रिहर्सल करना, तैयारी करना, लगना, पूरा दिन का दिन लग जाता है। लेकिन जितना जितना बहिर्मुखी में रहते हैं उतना फिर अंतर्मुखी हो जाते हैं। पूरा बैलेंस, क्योंकि हमारी सारी सिद्धियां, हमारा सारा अभ्यास अंतर्मुखता के बिना संभव ही नहीं। और जो यहां माइक पर बैठे हैं, यहां जो बोलते हैं, जितना बोलते हैं उतना बोलने के लिए उतना देर साइलेंस में रहने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जब तक उनकी पूरी तैयारी नहीं है। हम अंतर्मुखी होकर के, केवल अंतर्मुखी जब तक नहीं होते हैं, अंतर में मनन चिंतन नहीं करते हैं, इसकी विधिवत तैयारी नहीं करते हैं कि मुझे क्या देना है। मुझे याद है जगदीश भाई का क्लास था, आखिरी दिनों की बात है, मैं आंगन में आया तो वहां एक कागज मिल गया। तो कागज में देखता हूं तो उन्होंने लिखा था कि आज शाम के मधुबन निवासियों के क्लास में क्या क्या पॉइंट सुनाना है, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट। वो कागज मुझे मिला। फिर जगदीश भाई क्लास हुआ, मेरे बड़ा आश्चर्य लगा कि जगदीश भाई तो बड़े ज्ञाता है, कि बड़े ज्ञानी है, उनको क्या सोचना है, मधुबन वाले के सामने बैठे हैं, कर दें, शुरू कर दें, कोई कमी तो नहीं है, भंडार है। लेकिन नहीं, यहां पर बैठना है, कोई कितना भी विद्वान हो, कितना भी समझदार हो, लेकिन हम केवल सुनाने के लिए नहीं, इनको क्या देना चाहिए, मेरे पास क्या है, क्या दूं। मैं कभी कभी, हम विश्लेषण करते हैं, मैं क्लास में यहां बैठा हूं, आपके सामने बैठा हूं, क्यों आपको सुना रहा हूं? कि आप कहें बहुत अच्छा सुनाया, कि बहुत अच्छा अच्छा हो, या मैं जानता हूं कि आपसे ज्यादा मेरे के अंदर नॉलेज है, किस लिए सुना रहा हूं? ये सोच करके सुनाता हूं कि जो मेरे अनुभव में आया है उस अनुभव को मैं आपके साथ शेयर करूं, कैसे, किन स्थितियों और परिस्थितियों में मैं उसको पार करता हूं, उसका क्या मैं उपयोग करता हूं, कैसे उस समस्या का निदान करता हूं, समाधान करता हूं, वो मैं आपको अनुभव सुनाऊं। हो सकता है आपसे, हमसे भी अच्छा बोलने वाले, आपसे एक एक से बढ़कर के, ये बच्ची है, अगर इसको बिठा दिया जाए हमसे भी अच्छा कहीं ज्ञान सुना देगी। वो नहीं, सुनाने में कमी नहीं है, आजकल तो लोग सुनाने को तो क्या क्या सुना देंगे, लेकिन क्या आप करते भी हैं उसको? कभी कभी मुझे हंसी आती है, कि यहां बैठते हुए प्रातः योग में गाइड मेडिटेशन सामने बैठने का बाबा चांस देता है। यहां बैठते बैठते मुझे लगता है 35-40 साल हो गए सवेरे योग का, और वो योग का प्रभाव इतना गहरा होता है कि उसी पर पूरी दिनचर्या होती है। प्रतिदिन सवेरे अमृत वेले का जो आनंद होता है, हमारा ग्राफ हाई होता है 90% के ऊपर, दिनचर्या इतनी अच्छी होती है, उस योग में इतना आनंद आता है, इतना भर लेता हूं कि वो मेरी दिनचर्या की खुराक बन जाती है। और उसी योग का परिणाम है कि योग के बाद पहले निकल जाता था, एक नक्की झील का भ्रमण किया और हमारा एक गीत तैयार। बाबा से पूछता हूं, बाबा आज की क्या प्रेरणा है? वो योग में जो अनुभव हुआ, मस्तक सिंहासन, जितने भी ज्ञान है, हजारों गीत, उन गीतों की जो पैदाइश है, उन गीतों का जो जन्म हुआ है, वो यहां से उस योग का परिणाम है। अब देखिए, यहां पर बैठ के जो अनुभव आया, वो अनुभव लेकर के उनसे बना, तो ये हमारी रिस्पांसिबिलिटी ज्यादा हो जाती है अंतर्मुखी बनने की। और क्या होता है फायदा अंतर्मुखता का? एक बहुत बड़ा फायदा यह है कि हर ब्राह्मण को अंतर्मुखी होकर के ज्ञान का मनन करें, चिंतन करें, अनुभव करें, अवगाहन करें, विचार करें। बाबा की मुरली जो सुनते हैं, केवल सुन लेना काफी नहीं, सुनने के बाद मैं भी चला जाता हूं वहां लास्ट पॉइंट तक, अनदरा पॉइंट तक, सनसेट पॉइंट तक, वहां चला जाता हूं और पूरा चिंतन चलता है, उसको रिवाइज करता हूं, दोबारा पढ़ता हूं, तिबारा पढ़ता हूं, क्विज भी देता हूं, पॉइंट्स यहां भी नोट करता हूं, और उस पर मनन चिंतन भी होता है, उसी के ऊपर क्लास भी होता है, उसकी एक दिन पहले कविता बनाता हूं, कविता के ऑडियो भी बनाता हूं, टेक्स्ट भी बनाता हूं, फिर भी भूल जाता हूं, इतने पर भी भूल जाता है। इतना करने के बाद फिर आपस वार्तालाप भी करता हूं आपस में भाई बहनों से मिल करके कि आज बाबा ने क्या कहा, कुछ वो सुनाते हैं, कुछ हम सुनाते हैं, इस तरह भी करते हैं, फिर भी भूल जाते। इसलिए ब्राह्मण भाई बहनों को मुरली सुनने के बाद उसको और भी पढ़ सकें तो पढ़ें, और उसको और अवगाहन करें, नोट करें, बात करें, चिंतन करें, गहराई में जाएं, बाबा ये जो कहते हैं इसको कैसे करें, कैसे हम अप्लाई करें, क्योंकि जब हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। इसके लिए भी अंतर्मुखी होना बहुत जरूरी है। सूक्ष्म लीलाओं का अंत के दिनों में जो हमारी अंतर्मुखता स्थिति है, ये अंत में जो साक्षात्कार बाबा कहते हैं, अंत में आपको पद क्या मिलना है, आपका स्टेटस क्या होगा, आने वाले नजारे क्या होंगे, उनमें बाबा की टचिंग क्या होगी, विनाश हो रहा है, जहां पर आप बैठे वहां कुछ गड़बड़ होने वाला है, आपको सूक्ष्म अंतर्मुखी रहेंगे तो टचिंग होगी, अब मुझे यहां से जाना चाहिए। आप कहीं भी रहेंगे, टचिंग आई, बाबा कहता है बच्चे मधुबन जाओ, मधुबन जाओ। अगर अंतर्मुखी रहेंगे, इसमें व्यर्थ की मिक्सचरिटी नहीं होगी, तो आप सूक्ष्म लीलाओं को कैद कर सकेंगे, पा सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं। इसलिए भी अंतर्मुखी होना बहुत जरूरी है। तो अलग अलग पेपर्स आएंगे, और उन पेपर्स में पास होने के लिए बताया, जैसे आवश्यक वस्तुओं के अभावों का पेपर, और संस्कारों का द्वारा पेपर, पांच विकारों के द्वारा पेपर, पांचों प्रकृति के तत्वों के द्वारा पेपर भयंकर होगा, कर्म भोग के द्वारा पेपर, इविल सोल्स के द्वारा पेपर, जानवरों के द्वारा पेपर, और इसके अलावा बीमारियों के द्वारा पेपर, ये सब बताया। और आखिरी पेपर होगा ब्राह्मणों का पेपर, ब्राह्मणों के द्वारा। वो बड़ा सूक्ष्म है, जिनको हम अपना यहां समझते हैं, घर बार तो छोड़ दिए, लेकिन यहां पर भी किसको अपना मम्मी पापा बना लिए, किसको सखा बना लिए, साथी बना लिए। कल भी बाबा मुरली में था ना, कि आपस में एक दूसरे के उसमें माशूक और आशिक बना लेते हैं, ये ना बने, बल्कि हम सबको बाबा एक बाबा। इसलिए बाबा ने कहा, वफादार कौन है जो एक बाबा के, एक बाबा के कर्तव्य के, एक बाबा की महिमा के, एक बाबा के गुण गाते हुए जो एक बनेंगे, एक बाबा दूसरा न कोई, वही संपूर्ण वफादार बनेंगे। तो इस तरह से आइए और हम अपनी दिनचर्या को शक्तिशाली बनाएं, सब आने वाले पेपर्स में मजबूत होने के लिए हम अपने आप को तैयार करें। पांच बातें फिर से नोट कर लें आप। एक, उठते ही बाबा को याद करें, बाबा को नमस्ते कर लें। दूसरा, इस तरह से रोज की दिनचर्या अपना आरंभ करें कि आज के दिन मेरा अवतार हुआ है, आज के दिन मैं अवतरित हुई आत्मा हूं। इस तरह से अवतरित होकर के दिन की दिनचर्या का आरंभ करें और देखें कि मैं फरिश्ता अवतार हूं, ऊपर से मैंने मास्क बाहर से मम्मी पापा का पहना है लेकिन अंदर में मैं फरिश्ता हूं, अंदर मैं फरिश्ता हूं। दिन भर में ऐसे देखें जैसे मैं अंदर से झांक रही हूं, बाहर मैंने पहना हुआ है लेकिन अंदर में मैं फरिश्ता हूं। अपने फरिश्ते स्वरूप का विमर्श करें और रोज अवतार लें, रोज आए। अब आपकी सुविधा के लिए कहता हूं कि रोज आपकी दिनचर्या नीचे से ऊपर न जाए, रोज आप सबको नीचे भेज दें और समझें कि मैं परम धाम में हूं और इस प्रकार से नई दिनचर्या का आरंभ करें। आज के दिन मेरा इस दुनिया में अवतार हुआ है, ये बोनस मिला है मुझे दिन, और सब दिनों को अपने भाग्य को या जो हमको पिछले जीवन को जो समाप्त हो गया उसकी गलतियों को सुधारने के लिए एक दिन भगवान ने हमको और चांस दिया है। तो उठते ही बाबा को नमस्ते कर लें, अच्छी तरह नमस्ते कर लें, नींद वाला नहीं। दूसरा, ये संकल्प साथ दिनचर्या आरंभ करें कि मेरा अवतार हुआ है शरीर में, और ऐसे बैठ जाएं, ऐसे बैठें, सब कोई बैठें ऐसे मुद्रा में, मैं शिव शक्ति हूं। इस अनुभव में बैठे। तीसरी बात कि अमृत वेले का योग बहुत अच्छा होना चाहिए, ऐसे बैठ जाएं, ये जो आसन है आपके पास बैठा हूं सामने, इस आसन बैठते हैं तो घंटों तक बैठते हैं, इसमें ना नींद आती है ना किसी प्रकार का आलस लगता है, बहुत अच्छा। और सामने देखें, बाबा को देखें, डांस करें, बाजा वाजा बजाएं लेकिन सोए नहीं, ये निद्रा वाला योग वो योग नहीं है। उस समय पर केवल बाबा को याद करें, थोड़ा समय बैठे लेकिन पक्का है। तो स्वरूप रेगुलर करेंगे ना, 4 से 4:45 बजे तक रेगुलर योग करें, आपका शक्तिशाली अमृत वेला हो। और चौथी बात है, बाबा की मुरली का बार बार अध्ययन करें, वही अपना सर्वस्व बनाएं। जितना बाबा की मुरली का अध्ययन करेंगे उतना आप व्यर्थ से बच जाएंगे, बाबा की मुरली सबका समाधान है। और जिसने आनंद लेना शुरू कर दिया बाबा की मुरली का, उसके ऊपर उपयोग करें। आजकल तो बहुत अच्छा, भाई बहनों का बहुत अच्छा पुरुषार्थ है, सब भाई बहने बाबा की मुरली के ऊपर इतना निर्भर हैं कि मुरली ही हमारे जीवन की बागडोर, उसको संभाले। पांचवी बात है, अभ्यास करते चलें कि मैं आत्मा, शिव बाबा यहां पर हैं, मेरे सिर पर से हाथ उठाएं और फील करें बाबा की किरणें आ रही हैं मुझ पर, बाबा किरणें और मैं आत्मा, बाबा किरणें मैं आत्मा। इस तरह का अभ्यास करें कि बाबा मेरे सिर पर हैं, उनकी छत्र छाया आ रही है, अब मैं प्रसन्नता से भर गया हूं, निरंतर इस स्मृति में रहें। नेक्स्ट, छठी बात, एकांत में। और सातवीं बात है, सबका धन्यवाद करें, प्रकृति का धन्यवाद करें, स्वयं का इसका धन्यवाद करें, थैंक यू मेरे शरीर बड़े काम के हो, बहुत अच्छे हो, इसका खूब धन्यवाद करें, हैं ठीक है, ऐसे ऐसे, वाह धन्यवाद पुराने खटारा गाड़ी, नहीं बहुत अच्छे बड़े काम की है, बहुत अच्छा है ना, हाँ इसको बहुत अच्छे संभालें और सबका धन्यवाद कर दें, थैंक यू जिन्होंने बुलाया, यहाँ पर मिलाया और आज मिलाया, बाबा का सबसे ज्यादा धन्यवाद करें। और पांचों स्वरूपों का अभ्यास कर लें, बैठ जाएं, जैसे मैं कहूं कर लें। मैं ज्योति सितारा, मैं देव प्यारा, मैं पूज्य न्यारा, मैं ब्राह्मण दुलारा, फरिश्ता पधारा, मैं ज्योति सितारा, मैं देव प्यारा, मैं पूज्य न्यारा, मैं ब्राह्मण दुलारा, फरिश्ता पधारा, फरिश्ता पधारा. ऑप्शन.